জন্ম সার্থক করি, জন্ম সার্থক কোন কোন মৌকা হ্যাঁ ভারত ভূমি মে ঘর ঘর মে গীতা হ্যায় ভাগবত হ্যায় বাকি কই পড়তা নেই কই আনতা নেই কই শুনতা ইতনা গধা হো গিয়া। ইসলিয়ে চৈতন্য মহাপ্রভু বিশেষ করতে কে কি ভারত ভূমিতে মনুষ্য জন্ম হইল, জন্ম সার্থক করি, জন্ম সার্থক করি কা অর্থ তাহা জন্ম ক পূর্ণ বনাও সম্পূর্ণ বনাও, সম্পূর্ণ বনানে কে তরিকা ক্যা এই বেদাদি শাস্ত্র পড়ো অচ্ছি তরহ সমঝো তবে তো জীবন সফল হোক। জাসুসি লিটারেচার পড় কে ক্যা লাভ হোক, নেই উসি মে আসক্তি, উসি মে আসক্তি তদ বয়স তীর্থম ভাগবত মে বতা ন তদ বচশ্চিত্র পদম হরের যশ প্রগণীত করছি তদ বয়সম তীর্থম। जिस शास्त्र में भगवान की गुणगान हाँ लिखा नहीं है वो जो शास्त्र है हाँ साहित्य है वो बायस तीर्थम कौए का आनंद का स्थान है, कौए कौए जितना झूठा चीज खराब चीज फेंक देता रस्ता में उसी में कौए लुका के आनंद लेता है तद बायसम तीर्थम। और जिस शास्त्र में भगवान का गुणगान लिखा है वो हंस का लिया है परमहंस हंस हंस राजहंस वो स्वच्छ जल में रहता है जहां पद्म फूल और बड़ा वातावरण बड़ा सुंदर वहां जाके वो हंस लोग रहता है और कौएल होता है जहां सब खराब चीज फेंक दिया जाता है उधर कौए रहता है। ये पक्षी में भी विभेद है, कोई हंस है कोई कौए है। इसी प्रकार ये जो शास्त्रादि है वेदादि शास्त्र में जो ध्यान नहीं देते हैं और इधर उधर का न्यूज पेपर जासूसी सब खबर पढ़ते हैं वो सब कौए है। राजहंस जो होगा ये सब शास्त्र का अनुसूलन कर परमहंस राजहंस ये उचित है। ये भारतवर्ष में बहुत जल्दी ये काम हो सकता है, भारतवर्ष में अभी तक पंडित है और भक्त भी है जो कि शास्त्र को समझता है समझा सकता है उसको पास जाए शास्त्र का अभिलाष समझे और जीवन को सार्थक करे करके खाली बैठ बैठ नहीं रहे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जन्म सार्थक करी फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो अपना जीवन सार्थक कर लो फिर परोपकार करो दुनिया को सुनाओ। दुनिया में काम तो देख रहे हैं सारा दुनिया में केवल आहार निद्रा भय मैं तो नहीं जानते तुमको सुनाना चाहिए। ये भारतवर्ष का काम है जो पृथ्वी का है कि कोना कोना में सब चले जाए बड़े बड़े विद्वान साधु भक्त लोग जाके इनको सुना है ये सुनता है ये सुनने लेकिन बहुत आग्रह इनका है तभी तो आया है। ये इधर आपका स्विंग मशीन देखने को नहीं आया, जब इंडस्ट्री स्विंग मशीन बनाया साइकिल बनाया वो तो 200 बरस पहले ये लोग बनाया। वो रास्ता में जाने से अब कभी कोई माननीय व्यक्ति नहीं होंगे जब इंडस्ट्री में बड़ा हो गया तुम क्या इंडस्ट्री करो वो 100 बरस आगे है उसको अगर भगवत भक्ति दोगे तभी तुम्हारा सम्मान बनेगा। वो चीज वह है नहीं मशीन बना के उधर बड़ा नहीं हो सकते, इधर बना सकते हो बोनगाए सियाल राजा जंगल में सियाल भी वो सियाल भी राजा हो जाता वो अलग चीज है। यदि भारतवर्ष का सम्मान चाहते हैं तो ये चैतन्य महाप्रभु का जो मिशनरी है जो भारत भूमिते मनुष्य जन्म हईल जा জন্ম সার্থক করি করো পর উপকার ইয়ে ভারত কা মিশন হওয়া চাই উদর সে নকল করকে আর স্কাই স্ক্রাবার বিল্ডিং বনা করকে ইসমে আপ উসে বড়া নেই হো সকে ও আর আগে বহুত ইসিলিয়ে ইয়ে কৃষ্ণ কনসাসনেস মুভমেন্ট হ্যায় যে আসল মে ভারত জো আসলি কৃষ্টি হ্যায় সভ্যতা হ্যায় भगवत भक्ति और भगवत गीता मौजूद है कोई मुश्किल नहीं है। भगवद गीता में सब बात अच्छी तरह से लिख दिया गया है, उनको अच्छी तरह से समझाओ, खुद भी समझो, अपना जीवन का सार्थक करो और फिर पुकारो। सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। और चैतन्य महापुरुष बता रहे हैं कि आप लोग सब गुरु बन जाइए। हाँ, कहें गुरु का बहुत जरूरत है, क्योंकि सारा दुनिया सब मूर्ख है, गधा है, उसको सिखाने के लिए बहुत गुरु का जरूरत। भाई वो गुरु नहीं है जो अनशन बात बता करके उधर के मांस खाने के लिए सीख आया और इधर सन्यासी बने, वो गुरु नहीं। गुरु तो जैसा शास्त्र में बताया है, जैसे चैतन्य महापुरुष बताते हैं कि आमार आज्ञाएं गुरु होगी, मैं जो बता रहा हूं उस आज्ञा को पालन करके गुरु हो। ऐसा भूमि फोर गुरु में आज्ञा पालनकारी गुरु, जो कि सुपीरियर ऑथोरिटी का ऑर्डर मानते हैं वो गुरु है। और अपना कुछ मैन्युफैक्चर करके गुरु नहीं होते, वो गुरु नहीं। समित्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम साधे परेच निष्णातम ब्रह्मणि भूषमाश्रयम, ये गुरु का लक्षण है। तद्विद्धि प्रणिपातेना परिप्रश्नेना सेवया उपदक्षन्ति तद्ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शी, जो तत्वदर्शी है वो गुरु है, जो तत्व को देखा है, ऐसा भूमि फोर्म। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण भगवान और कृष्ण भी बोलते हैं वही एक ही बात, जयदम परमम गुह्यम मद भक्ता मद भक्ति जो विदास न चत्मात् मनुष्य सुकश्चित में प्रिय कृष्ण। तो पूर्व पूर्व आचार्य का ये भगवान का जो बातें हैं उसको यदि प्रचार करे तभी वो गुरु है, नहीं तो ऐसे गुरु नहीं हो सकते। तो चैतन्य महापुरुष कहते हैं इसीलिए जे आमार आज्ञाएं गुरु है या तारो है, हमारी आज्ञा से मैं जो बोल रहा हूं, कृष्ण चैतन्य महापुरुष क्या बोल रहे हैं, वही जो भगवान बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं मां अनेकंग शरणं व्रज, और चैतन्य महापुरुष बोल कह रहे हैं जो कृष्ण का भजन करो, हरे कृष्ण का नाम जाप करो, ये कृष्ण का भजन, कोई फर्क नहीं। और चैतन्य चैतन्य और खास करके बताते हैं हमार आज्ञाए गुरु हैया तारो यही देश, जारे कहो जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। ये परंपरा चैतन्य महाप्रभु कोई नई बात नहीं बोल रहे, वो कहते हैं कि कृष्ण का जो उपदेश है उसको बताओ सबको, जारे देखो तारे कहो, कहीं भी किसी को देखो ये कोई मुश्किल है क्या। यदि प्रत्येक व्यक्ति ये कहने को शुरू करे तो देखो जी, भगवद गीता में भगवान चाहते हैं कि सब कोई उनका चरण में शरणागत हो जाए, इसलिए आपको मैं बोल रहा हूं कि आप भी हो जाइए, बस आप गुरु हो गए, कोई मुश्किल है क्या। कृष्ण उपदेश, जो कृष्ण बोल रहा है उसी को बोलिए, आपको कोई मैन्युफैक्चर करने नहीं पड़ेगा। जो कृष्ण बोल रहा है जारे देखो तारे कहो कृष्ण, तो सबको लिए उचित है। जैसा चैतन्य महापुरुष बताते हैं, जैसा कृष्ण बताते हैं, इसी प्रकार कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट को पूरी दुनिया में प्रचार करना चाहिए। और नहीं तो जो कुछ हम लोग कर रहे हैं वो केवल परिश्रम है, उसमें कुछ लाभ नहीं। तो धर्म सानुष्ठित पुंसान विश्वास न करते, रुचि अपना रुचि बढ़ाइए और दूसरे को रुचि संपन्न कराइए। ये शास्त्र का निर्देश है, सबको मिलकर के सबको समझा कि भाई कृष्णास्तु भगवान स्वयं, कृष्ण जो असल भगवान है वो कृष्ण है, कृष्णास्तु भगवान स्वयं, वो चाहते हैं जो उनका चरण में आप लोग सब शरणागत हो जाइए और मैं भी उनका वृत्त और उनका जो संवाद है उसको वहन करके पियन का ऐसे आपको बस आकर के दंते निधाय तिनकं ये बड़े बड़े साधु लोग यही कहते हैं, दंते निधाय तिनकं पदयो निपत्य। हाँ, हम अपना मुंह में तिनक ग्रहण करके बहुत नम्रता से और बहुत खुशामदी करके आपको चरण में एक निवेदन कर रहा हूं, ये प्रचार के विषय। तो जो भद्र व्यक्ति होगा वो सुनेगा, अच्छा भाई बोलो, तुम इतना दीनता से नम्रता से कुछ चीज बोलने को चाहते हो तो बोलो, क्या बोलने को चाहते हो? तो बोलना है कि हे साधव, आप तो बहुत साधु है, आप बहुत जानने वाला है, सुनने वाला है, ये हमारा निवेदन है। सकलों में वह विहाय दुरा, जो कुछ आप सीखे हुए हैं उसको फेंक दीजिए, उसको दूर में फेंक दीजिए। सकलों में वह विहाय दुरा, फिर हमको क्या करना है? चैतन्य चंद चरण कृतानुराग, जो चैतन्य महाप्रभु जैसे बताते हैं उसका आप करिए। ये प्रचार का काम है, प्रचार कलिकाल में ये झगड़े का अड्डा है, ऐसा ज्यादा जबरदस्ती बोलने से बिगड़ जाए। उसको बहुत खुशामदी करके, जो आपको पैर में गिर करके और खुशामदी करके और दंत में तीर्ण ग्रहण करके एक निवेदन कर रहा हूं, जो आप बड़े साधु है, बहुत सीखे हुए हैं, कृपा करके सब कुछ भूल जाइए, केवल चैतन्य महाप्रभु जैसे बता है ऐसे सुनिए। क्या बताया ना, ओ जारे देखो तारे कहो कृष्ण, जिससे आपसे मुलाकात हो, बाजार में हो, घर में हो, हाट में हो, और रेल में हो, एरोप्लेन में है, देखो जी ये भगवत गीता की वाणी है, सर्वधर्मान पुरुष, तो आप ये काम कीजिए। हरे कृष्ण बोल, बस अब गुरुवर धर्म स्थान चित पुंसान विश्व से न प्रकाशित। और एक धर्म का विषय बोलना है, धर्म का अर्थ होता है ड्यूटी। तो ड्यूटीज एक एक व्यक्ति का एक एक ड्यूटी होता है, जैसा पहले आप लोग को सुना है। तो वास्तविक मनुष्य समाज में चार विभाजन होना चाहिए, चातुर्वर्ण मया सृष्टि गुण कर्म विभाग, ये होना ही चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण कौन है? जिसका दिमाग बहुत अच्छा है और प्रैक्टिस किया है, तपस्या किया है, सत्व सम दम तिथि खा आर्जव ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभाव, ये सिखाना चाहिए। एक क्लास ऑफ मैन देर मस्ट बी ब्राह्मण, नहीं तो सोसाइटी को कौन गाइड करे? सब शूद्र हो गया तो कौन गाइड करे? कलयुग में तो यही मुश्किल है, कलौ शूद्र संभव, कोई ब्राह्मण नहीं, कौन सिखाएगा? ब्रेन नहीं है, शूद्र है पैर और ब्राह्मण है हेड और क्षत्रिय है बाहु और वैश्य है पेट। जैसा शरीर में चार विभाजन है, इसी प्रकार समाज का चार विभाजन होना चाहिए और सबसे परस्पर कोऑपरेशन सहयोग होना चाहिए, तो परफेक्ट सोसाइटी। जैसा आपका हमारा ब्रेन है, पैर है, हाथ है, पेट है, ये अगर सहयोग करे तो शरीर सुस्त रहता है, सब काम ठीक ठीक चलता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम, ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब आजकल का विचार है, सब उड़ा दो, केवल शूद्र ही शूद्र ही रहो, उसमें कुछ लाभ नहीं। ये शूद्र लोग जो गवर्नमेंट में चला गया है तो ये क्या गवर्नमेंट चला गया, शूद्र क्या जाएगा, तो क्षत्रिय चाहिए। इसलिए दुर्दशा, ये जो चार विभाजन है धर्म, इसका नाम है वर्णाश्रम धर्म। हम लोग अभी नाम दिया है हिंदू, हिंदू नहीं, हिंदू तो मुसलमान का दिया नाम है, असल में शास्त्रीय नाम है वर्णाश्रम धर्म, हिंदू धर्म नहीं, वर्णाश्रम, चार वर्ण चार आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, ये आठ चीज अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज भाव से चलना चाहिए। तो कलयुग में ये भी असंभव हो गया और ठीक ठीक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मिलता नहीं, इसलिए कलयुग में भगवान शास्त्र में एक ही निर्देश दिया है कि तुम चाहे ब्राह्मण हो, शूद्र हो और क्षत्रिय हो, जो कुछ हो, असल में तुम्हारा काम है भगवान को संतुष्ट करना, ये असल काम है वर्णाश्रम विभाग। ये नैमिषारण्य में बड़े बड़े ब्राह्मण पंडित और ऋषि लोग को विचार में ये स्थिर हुआ है। अतः पुंग भी द्विज श्रेष्ठ, ये सुध गोस्वामी बताया। तो देखो जी, आप लोग तो सब द्विज श्रेष्ठ है, बड़े बड़े ब्राह्मण सब इधर उपस्थित है। तो शास्त्र का अनुसार ये निर्दिष्ट है, अतः पुंग भी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग, कोई वर्णाश्रम को बात किया, ये चार वर्ण और चार आश्रम। तो वर्णाश्रम विभाग स्थानुष्ठित धर्मस्य संसिद्धि हरितोषण, वही बात इधर भी है। जो चाहे ब्राह्मण है ये, चाहे ब्रह्मचारी है ये, चाहे शूद्र है ये, चाहे गृहस्थ है ये, जो कोई असल आपका काम है संसिद्धि। यदि आप सिद्धि प्राप्त करने को चाहते हैं, संसिद्धि हरितोषण, भगवान को संतोष करने, तो कलयुग में ये जो विभाजन है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ स्थित के होना बहुत मुश्किल है। इसलिए एक काम सबके लिए उचित है कि हरितोषण, हम भगवान को संतुष्ट, तब आपको सिद्धि होगी, संग सिद्धि हरितोषण। भगवान कलयुग में बड़ा सरल भाव से संतुष्ट हो सके, क्यों, किस तरह से, हरेर्नाम 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 केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरंजन। इसलिए शास्त्र का निर्देश अनुसार हम लोग तो बहुत गिरे हुए हैं, इसलिए हरेर्नाम भगवान का नाम, ये नहीं है कोई नाम लिया, नहीं हरेर्नाम, इसलिए खास करके बताया हरेर्नाम। तो भगवान का अनंत कोटी नाम है, राम नृसिंह बराहो आदि अनेक हजार हजार नाम है, कोई नाम भी ग्रहण कीजिए। अभी हम तेहरान से आ रहे हैं, उधर मुसलमान का देश है, तो कोई कोई ऐसा समझा जो हम लोग आपका कृष्ण का नाम क्यों ले, नहीं हम बोलता है जो कृष्ण का नाम नहीं, भगवान का नाम अनेक है, आप क्या भगवान का नाम समझते हैं, वो बोलता हम लोग बोलते हैं अकबर अल्लाह, तो अल्लाह का नाम लीजिए, बाकी भगवान का ही नाम लीजिए, और कुछ नाम, नाम नामकारी बहुला निज सत्व शक्ति। तो भगवान का नाम शास्त्र में जैसा है उसको ग्रहण कीजिए, ग्रहण करके अपना जीवन को सफल कीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। और यदि हम लोग भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान को समझाने धर्म स्थान विश्वक्ष न कथा भगवान को अपनाया नहीं, तो फिर जीवन केवल विफल हुआ, समय वही केवल, ये शास्त्र का निर्देश है। तो कलयुग में ये बड़ा सरल है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये कीर्तनीय सदा हरि सततं कीर्तयन्तं मां जतन्तश्च धीरभृतं, भगवद्गीता में सब समय हमारा नाम कीर्तन करते हैं, सततं सततं माने चौबीस घंटे, उठते बैठते सोते खाते पीते सब समय हरे कृष्ण सततं कीर्तयन्तं मां जतन्तश्च धीरभृतं नमः संतश्च मांग नित्यं नित्य युक्ता उपासते, ये सब शास्त्र का निर्देश है। तो शास्त्र विधि ग्रहण करने से सिद्धि होती है, नहीं तो सिद्धि नहीं, जो फिर समय है वही कबल, यदि शास्त्र विधि को हम लोग छोड़ देते हैं, न सिद्धि स्वभाव न थी जो शास्त्र विधि मुत्सिज वर्तती काम का, न सिद्धि स्वभाव न थी उसको कभी सिद्धि लाभ नहीं, न सुखांग न परांग थी, और सुख तो होता ही नहीं है, परागति का बात ही छोड़ दिया। तो शास्त्र में बताया है, निर्देश दिया है, चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया है कि हरे नाम हरे नाम केवलम, बड़ा सरल उपाय है, ये आप लोग से निवेदन है कि इसको ग्रहण कीजिए और उसको जपा कीजिए, जीवन आपको सफल होगा। थैंक यू वेरी मच। काली भक्त माने पटाखा भक्त भक्त तक तो किसी ननम देही रूपम देही रूपवती भाज्यांग देही जसो देही ये सब देही, और आम खूब मजा कर कालिक पालिक पुजो तादेर जन्य करा हयेछे जारा पाटा खाबे, एमनि बिथा मांस कसाई खानार मांस खे खे आगबारे नरके जाबे সেই জন্য কালী পুজোর ব্যবস্থা করা হয়েছে যে মাসে একবার হয় অমাবস্যা, অমাবস্যাতে কালী পুজো করলে আর যাই হোক মায়ের প্রসাদ খাও, তো মাসে একবারই পাঁটা খাবার সুবিধা। আর রোজ নয়, রোজ নয় যে ওই দোকানে তো একটা কালী রেখে দিয়েছে, এটা তো স্বাস্থ্যবিধি। স্বাস্থ্যবিধি হচ্ছে কালী পুজো করে খাও, এটা মানে রেস্ট্রিক্ট কর, এটা যে খুব একবার রাস্তা করে দিয়েছে আজকাল যেটা চলছে সব জায়গাতে। মুসলমানের মুসলমানের যে কোরবানি সেটা ওই বকরির সময় মসজিদে করে, এটা জিহিংসা একেবারে নিষেধ সব জায়গায়। খ্রিস্টানরাও টেন কমান্ডমেন্টস ভেতর আছে, দাও সাল না কি কি মানছে কি শুনছে যা তা করছে স্বাস্থ্য। সেই জন্য বলছে যশাস্ত্র বিধি মুসৃজ্য বর্ততে কামকাল না সিদ্ধিং সভাতে না সুখং না পরাম। যারা স্বাস্থ্যবিধি ছেড়ে দিয়ে যা তা করে তারা সুখ তো কোনোদিন পাবে না, সিদ্ধিও পাবে না, আর মুক্তির তো কোনো কথা। আস্তেতে লোকে বলছে, স্বাস্থ্যতে বলেছে লোকে ভবয়া আমি সমুদ্রসী বা নিত্যাস্ত জন্তু। জন্তু মাত্রই তিনটে জিনিসে খুব আকর্ষণ আছে, কি না ববয়া স্ত্রী সংসর্গ করা, আর আমিষ, আমিষ মানে মাংস মৎস্যাদি ভোজন করে আমিষ, ববয়া আমিষ আর মদ্য সেবা লিকার ড্রিঙ্কিং লিকার, এটা একটা সাধারণ আকর্ষণ আছে। তো এটা আবার শাস্ত্রেতে নির্দেশ করছে কেন, না নির্দেশ এই জন্য করছে আকর্ষণটাকে ক্রমশ ক্রমশ কমিয়ে কমিয়ে ওটাকে নীল করে দেবে, এই জন্য শাস্ত্রেতে বিবাহ করতে বলছে যে স্ত্রী পুরুষের সঙ্গ হতে আছে, বিবাহ করার না করা আছে। ওটা বিবাহ করতে বলছে কেন, না ওটাকে রেস্ট্রিক্ট করছে যে একটা স্ত্রী একটা পুরুষের মধ্যে থাক, তা নাহলে ব্যবিচার হলে তো আর কিছু থাকলাম সব নষ্ট হয়ে যাবে, ওটাকে রেস্ট্রেন করছে। যে পাঁটা তো এমনি বাজারে কিনতেই পাওয়া যায়, আবার কালী পুজো করে বলবার কিটা ওই রেস্ট্রিক করছে, যে অমাবস্যার দিনে কালী পুজো হবে তার মানে রেস্ট্রিক হয়ে গেল মাসে একবার। ওই ইচ্ছে করল বাজারেতে কসাইখানার মাংস কিনে নিয়ে এলো, মহাপাপ। রেস্ট্রিক করতে 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 কোনদিন ওটা শূন্য হয়ে যায়। আসল উদ্দেশ্যটা যে সেগুলো ছাড়তে আসবে, কিন্তু তো ছাড়বে না, ওই আস্তে আস্তে ছাড়বে, এই জন্যে শাস্ত্র। গৌরী মঠের কথা এখানে আমরা কি করব, সব বুদ্ধি দিয়ে ভগবানের কথা বোঝা যায়। শোনো, এই ভগবান কৃষ্ণ ওই জন্য জন্ম কর্ম দিব্য, আপনি যে জন্মটন্ম বুঝে রেখেছেন বাবা মা জন্ম ও জন্ম নয়, এই জন্য বলছে জন্ম কর্ম দিব্য যু জানা দিব্য। শোনো শোনো, ভগবানের জন্মটা ওইরকম না, আপনি যেরকম বলছে বাবার থেকে জন্ম হলো মায়ের থেকে জন্ম তা নয়, এই জন্য বলছে জন্ম কর্ম সমীর দিব্যম, দিব্যম বলবার কার উদ্দেশ্য, ওটা লৌকিক নয়, আপনি তো লৌকিক কথা বলছেন। হ্যাঁ, ওই তো বাবা মার জন্ম, পিসিমার জন্ম, মায়ের জন্ম, এইসব হচ্ছে লৌকিক। হ্যাঁ, তো সেইটা সেই জন্য বলছে দুটাকে জানতে হবে ভালো করে। জন্ম কর্ম সময় কি বংশ জানাতি তত্ত্ব, আমি যে বুদ্ধি নিয়ে বুঝে রেখেছি জন্মকর্ম ওই সব বুদ্ধিতে চলবে, দিব্যম এবং তত্ত্বত জানতে হবে। এবং ভগবান নিজে বলছে যে মনীষারাম সহস্রেশু কশ্চিত যদি সিদ্ধায় যততাম বিসিদ্ধানাম কশ্চিত ব্যক্তিমাম তত্ত্বত, তত্ত্ব তো বুঝতে হবে, আর সে তত্ত্ব তো বোঝাটা সাধারণ না, বলছে লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে কেউ সিদ্ধি লাভ করে আর যতটা আমাকে সিদ্ধা আনাম, এই সিদ্ধি লাভ যারা করি তাদের মধ্যে কেউ জানে তত্ত্ব। ও আপিস বুঝে রেখেছেন যে মায়ের পেট থেকে যেমন ছিল কৃষ্ণ যেমন জন্মেছে রাম, ওই রাম ন সেটা বুঝতে হবে, এটা তাত্ত্বিক বুঝতে হবে, এবং সে তাত্ত্বিক বুঝবার রাস্তাটাও ভগবান বলে দিয়েছে, ভক্তা মাম অভিজানাতি যাবান যাচ্ছামি তত্ত্ব, ওই তত্ত্ব ভগবানকে তত্ত্ব তো বুঝতে হবে, যা আমরা বুঝে রেখেছি ওইরকম বুঝে হবে। এবং তত্ত্ব বুঝবার জন্য যে তত্ত্ব দর্শী না ভগবান বলেছেন, তদ্বৃদ্ধি প্রণিপাতে না পরিপুষ্ণে না সেবয়া উপদক্ষান্তি তদ জ্ঞানম জ্ঞানী ন তত্ত্ব দর্শী, এই তত্ত্ব কতটা আগে বুঝতে হবে, ওইরকম নিজের মন ভরা বুঝলে হবে, এবং সেটা জানতে হবে তদ্বৃদ্ধি সেটা জানো কি করে প্রণিপাতে না, আগে নিজের যে বুদ্ধা বুদ্ধি আছে সেটাকে প্রণিপাত করতে হবে প্রকৃষ্ট রূপে করে দিতে হবে, এটা হচ্ছে আসল কন্ডিশন, যে আমি খুব জেনে রেখেছি বুঝে রেখেছি ব্যাস ঠিক হয়ে গেল না, তদ্বৃদ্ধি প্রণিপাতে প্রকৃষ্ট রূপে নিপাত করে দাও, প্রণিপাতে পরিপ্রশ্নে সেই ভয়া সেবা করতে হবে, পরিপ্রশ্ন করতে হবে, প্রণিপাত করতে হবে, এইরকম ভাবে করলে যে জ্ঞানী তত্ত্বদর্শী যে তত্ত্ব জানে সে বুঝে উঠবে, নিজের মন ভাড়া বুঝলে হবে, যেমন শাস্ত্রের নির্দেশ আছে সেরকম। ওই জন্য বলছি যে তত্ত্বদর্শীর কাছে যেতে হবে ওইরকম ভাবে বুঝলে হবে, ওইরকম বুঝলে হবে। এটা স্পেকুলেশনের জিনিস না, অথাপি দেব পদাম বুঝদ্দম প্রসাদ লীশান গৃহীত ওই জানাতি তত্ত্বম, প্রসাদ লীশ গৃহীত যারা ভগবানের সামান্য একটু প্রসাদ পেয়েছে তারা তত্ত্ব তো বুঝতে পারে, জন্ম কর্ম অঞ্চ দিব্যম যে জানাতি তত্ত্ব, ভগবানের তত্ত্ব জ্ঞান হলে শুধু মুক্ত হয়ে গেল,
একদাসৌ বনং জাত ও অজামিল কা উপাখ্যান আবি হাম লোগ বর্ণন কর রহে হ্যায়, ও অজামিল কা বিষয় পহলে ব্রাহ্মণ বালক সব ব্রাহ্মণ কা গুণ উসমে থা, ও ব্রাহ্মণ কা গুণ জো হ্যায় উসকো বতায়া গিয়া হ্যায় অয়ং হি সুত সম্পন্ন, ইয়ে ব্যক্তি জব বালক থা ইয়ে যুবক থা উনকো শাদী হো গিয়া থা তো সুত সম্পন্ন, সুত কা অর্থ হোতা হ্যায় বেদ কা জ্ঞান, বেদ কা নাম হ্যায় শ্রুতি, অর জো বেদ কা জ্ঞান শুনকে লাভ কিয়া হ্যায় উসকো কাহা জাতা হ্যায় শ্রোত্রিয়ম অর শ্রুত, জো বেদ কা জ্ঞান শুনা হ্যায় গুরু সে, শুননে কা চিজ হ্যায় পহলে শুনে, ইয়ে জো হাম লোগ সৎসঙ্গ চলা রহে হ্যায় ইসকা উদ্দেশ্য হ্যায় কি বেদ কা জো জ্ঞান হ্যায় উসকো আপ লোগ আ করকে শুনে, শুনতে শুনতে জ্ঞান লাভ হোক, পড়নে কা ভি জরুরত নাই হ্যায়, কোই আগর পড়নে কো লিখনে কো নাই জানতা হ্যায় তো উসকো জ্ঞান কেসা হোগা, শুনকে হোগা ভগবান কান দিয়া হ্যায়, আসল মে পহলে वेद का ज्ञान सबको एक गुरु से सुन करके ही सीखता था, लिखित पुस्तक नहीं था। लिखित पुस्तक ये कलियुग का प्रारंभ में व्यासदेव देखा कि कलियुग में स्मरण शक्ति कम हो जाएगा, इसीलिए केवल सुन करके उसका ज्ञान लाभ नहीं होगा, वो किताब पढ़ना चाहिए, रखना चाहिए। इसलिए हम लोग इतनी किताबें सब छप रहा हूं कि केवल इधर कभी कभी आप लोग आए सुन करके चले गए, केवल इधर कभी कभी आप लोग आए सुन करके चले गए, उसमें काम नहीं बनेगा। किताब पढ़िए सर, किताब पढ़ने से वेद का ज्ञान लाभ होगा। इसलिए ये जो ब्राह्मण बालक अजामिल आज इनकी इतनी दुर्दशा हुई है, उसका कारण ये जमराज का जो दूत है बता रहे हैं कि ये व्यक्ति पहले जैसा ब्राह्मण का गुण होना चाहिए वो सब इनका था। क्या है ना, सुत संपन्न, अच्छी तरह से वेद का ज्ञान सुना हुआ था, संपन्न, संपन्न माने आखिरी तक सुना था चार वेद का विषय में, और शील वृत्त गुणालय और व्यवहारिक काम में भी बड़ा सज्जन और सद्गुण सब इनमें था। शील सत्व गुणालय धृतव्रत, और धृतव्रत का अर्थ होता है जो काम करना है उसको व्रत धारण के किया जाए, यानी फुल डिटर्मिनेशन, धृतव्रत। भगवद्गीता में भगवान कहते हैं महात्मानुष्टुपां प्रार्थ दैवी प्रीति महाश्रित भजंती दृढ़व्रत। दे वर्ड इज ये शब्द का बताया है दृढ़व्रत और दृढ़व्रत। दृढ़ मीन निश्चित, सवेरे चार बजे उठना है निश्चित, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई चार बजे उठा और कोई नहीं उठा, नहीं, रोजाना अवश्य उठना चाहिए चार बजे, उसका नाम है धृतव्रत और दृढ़व्रत। ये नहीं जो ऑकेजनली कभी कभी हम उठ जाते हैं चार बजे, नहीं, रोजाना उठना चाहिए, ये ब्राह्मण का काम है। धृतव्रत मृदु, बड़ा शांत स्वभाव, दांत यानी अपना इंद्रियों को दमन करके रखना, ये ब्राह्मण का काम है। सम दम मन को स्थिर रखना, इंद्रियों को स्थिर रखना, सम दम तितिक्षा, ये सब सीखना चाहिए। तो इसीलिए बताया था मृदु दांत सत्यवान, सत्यवान का अर्थ होता है कभी झूठ नहीं बोलता। सत्यवान मंत्रविद और वेद का मंत्र साहब कंठस्थ और शुचि, बड़ा शुचि संपन्न, नीट एंड क्लीन, थ्राइस टेकिंग बाथ, तीन दफे स्नान करते हैं, कपड़ा और शरीर खूब शुद्ध रखते हैं। और गुरु अग्नि अतिथि विद्याना, ये तीन वस्तु को सत्कार करना, गुरु को देख करके ही नमस्कार करना चाहिए दंडवत। और अग्नि इन्हें रोजाना यज्ञ करना चाहिए। और अतिथि, कोई व्यक्ति अचानक घर में आ जाए उनकी सेवा करनी चाहिए। और वृद्धानांग, और विशेष करके वृद्ध व्यक्ति को खूब अच्छी तरह से सम्मान करना, उसको संतुष्ट करना, ये सब गुण है। और शुशुषु अनहंकृत, ये ब्राह्मण बालक ये सब करते थे और अहंकार भी नहीं, जहां हम इतना करने वाला है, अनहंकृत, सर्वभूत सुहित और सबके लिए सुहित, यानी उसको अच्छा सोचना सबके लिए, सबका मंगल हो, सर्वे सुखी न भवंतु, ये सब मनुष्य का सद्गुण है। साधु और साधु एक एक शब्द का अनेक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा अर्थ है, संक्षेप में आपको बता दूं तो साधु साधु का अर्थ होता है भगवत भक्त। भगवान जैसे बताया है भगवत गीता में साधु रेव समन्तव्य, साधु का अर्थ होता है कौन, भजते माम अनन्न भाव और पीछे सुदुराचार भजते माम अनन्न भाग साधु रेव समन्तव्य, जो कि भगवत भक्त है, भगवत सेवा छोड़ करके और दूसरा काम उनका नहीं है, उसका नाम है साधु। तो ये साधु शब्द भी आया है। मितोवाग और ज्यादा अनशन वक्ता नहीं, ये भक्त का उचित है कि केवल भगवान का ही नाम कीर्तन करें। अनशन बकने से खाली परमायु हानि होती है, उसमें कुछ लाभ नहीं है। इसलिए शास्त्र में कहता है वाचांशी भूकुंठ गुणानुबर्णन, यदि आप बात करें बातचीत करें तो वैकुंठ जो भगवान है उनका विषय करें, वो सिनेमा एक्ट्रेस का विषय नहीं। सवनम कीर्तनम विष्णु, अगर बातचीत करें सवन किसी का विषय सवन करना है तो भगवान विष्णु का विषय सवन कीजिए, और किसी का विषय कुछ बोलना है तो वो भगवान का विषय ही बोलिए। सवनम कीर्तनम विष्णु वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन सबई मन कृष्ण पदार बिंद, इसका नाम है कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना अमृत। ये सब समय मन को भगवान का चरण में लगा के रखना, और भगवान खुद बताते हैं मन मना भव मद भक्त मत जाजी मांग नमस्कुरु। तो इसका नाम है जो कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये चार बात, सब समय भगवान का चिंतन करना। इसलिए हम लोग सबसे अनुरोध करते हैं कि हरे कृष्णा नाम जपा कीजिए तो मन भगवान में लगेगा। हरे कृष्णा कृष्णा नाम तो सुन रहा है ना, तो सुनने से मन जाएगा उधर, ये मेडिटेशन है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे मन मना, वो करेगा कौन, मद भक्त। मन मना भव मद भक्त, बिना भक्त हुए वो हरे कृष्ण क्यों जपेगा। तो मन मना भव मद भक्त मद जाजी, मुझको पूजा करो, इसलिए भगवान खुद आए हैं मंदिर में, खूब अच्छे से सजाओ, भगवान को फूल चढ़ाओ, भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद खाओ, ये सब शास्त्र में विधान दिया है। मन मना भव मद भक्त मद जाजी मांग नमस्कुरु, अगर कुछ नहीं कर सकते हो एक दफे आकर के नमस्कार करके जाओ, बहुत सरल है, कोई मुश्किल नहीं है, बाकी हम लोग करने को नहीं चाहते। हम लोग कहते हैं चलो जी मंदिर में जाके कर क्या होगा, चलो रेस्टोरेंट में चलो एक कप चाय पिया जाए, बीड़ी फूका जाए, ये सब दुर्दशा क्यों ना हो। तो शास्त्र में जो विधि है उसको हम लोग मानते नहीं, उसको उल्लंघन करते हैं तो उसको कभी सुख मिल सकता है नहीं। जशास्त्र विधि मुसिज वर्तते कामकार न सुखम सहभावनति, उसको कभी सुख नहीं मिलेगा। शास्त्र विधि को उल्लंघन करेंगे और हम सुखी रहेंगे ये संभव नहीं है। तो ये बालक ब्राह्मण बालक ये युवक 20-25 बरस उमर ये सब चीज सीख लिया था। ब्राह्मण का घर में जन्म लेने का उपकार क्या है, दूसरे को सीखने पड़ता है, और ब्राह्मण का घर में जन्म होने से पिता माता का आचरण देखकर ये खुद ही सीख जाता, ये उपकार है। और ब्राह्मण का घर में जन्म हुआ और पिता माता का भी ब्राह्मण का आचार नहीं है तो बालक कैसे सीखे, और उसको सिखाया भी नहीं जाता स्कूल कॉलेज में भी, तो ये पतन हो गया। तो पतन होने का बहुत कारण है, और एक कारण ये बता रहा है कि एकदा असौ वो जो अजामिल ब्राह्मण कुमार एक दफे बनंग जात बन में गया था। ये एक दिन नहीं, ये ब्राह्मण का काम ही है जो वन में बगीचा में जाकर के भगवान के लिए सब पुष्पादि संग्रह करे। भगवान बोलता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम जोमि भक्त्या प्रजच्छति। भगवान को अर्चन करने के लिए कोई ज्यादा खर्च नहीं है, जो खर्च कर सके वो खर्च करें खूब अच्छी तरह से, और जिसका पास पैसा है नहीं खर्च नहीं कर सकता है उसके लिए भगवान राजी है। जो थोड़ा सा पत्र हमको दो, थोड़ा सा पुष्प हमको दो। भगवान नहीं बोलता है जो हमको ये सोना के थाली में लूची पूरी कचौड़ी लिया कर, भगवान खाने का बहुत है, उनको खाने के लिए कोई अभाव नहीं है। उनको कहते हैं चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेशु सुरभी रविपालयंतम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से। भगवान भगवान की सेवा करने के लिए शत सहस्र हजारों लक्ष्मी गॉडेस ऑफ फॉर्चून सब सेवा करने के लिए तैयार, तो भगवान का कुछ अभाव नहीं है। भगवान ये बंबई में जुहू में आके बैठ गए हैं, जो बेचारी खाने को है ही नहीं, इधर आपसे मांगने को आया, ये बात नहीं है। बात यह है कृपा करके आए हैं कि आप लोग मनमना भव मद भक्त मध्य आदि मांग नमस्कुरु ये सुविधाएं आपको देने के लिए आए हैं, और आप लोग चाहते हैं ये मंदिर किसी तरह से नहीं बने, भगवान इधर बैठ नहीं सके, ये आपकी प्रतिज्ञा है। भगवान बेचारी आए हैं आपको सुविधा देने के लिए, और आप लोग कृत निश्चय है कि इधर मंदिर को होने को नहीं देंगे। जब कीर्तन हो पुलिस में एप्लीकेशन दो, और पुलिस साहब कहें कि कीर्तन इज नुइसेंस, तो ये परिस्थिति है। इसका नाम है कलिजुग। जो भगवान कहते हैं जदा जदा ही धर्म सज्ञानी भवति भारत तदात्मानं सृजामि अहम्, ये धर्म की ग्लानी जब होए तब हम खुद आते हैं कि हमारा कोई परम भक्त को भेजते हैं उनको उद्धार करने के लिए, और वो बेचारी आए भी तो आप लोग उसको बैठने को नहीं देंगे। ये परिस्थिति है। तो ये बालक ब्राह्मण, बालक ब्राह्मण का सब गुण वो सब लाभ किया था, परंतु एक दिन एकदा सो बनंग जाता, वो वन में जाने के समय इसलिए वन में जाते हैं ना, पितृ संदेश कृत दिज, पिताजी घर में बैठ के भगवान की अर्चना कर रहे हैं, और पिताजी आदेश दिया है बेटा ये सब फूल और घास और तृण ये सब ले आओ। ब्राह्मण है उनके पास ज्यादा तो पैसा है नहीं, बाकी भगवान कहते हैं जो हमको पत्र पुष्प दो, पैसा है नहीं तो क्या हुआ, पत्र पुष्प तो कहीं भी मिल जाएगा, घर में भी मिल सकता है, घर का बाहर में भी मिल सकता है, ये कोई बात नहीं है। जो लूची पूरी हलवा देने से ही भगवान संतुष्ट रहेंगे नहीं, भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यम जूमी भक्त्या प्रदत्ते तद हम मसनामी, मैं उसको ग्रहण करता हूं खाता हूं। और भगवान आपका हाथ में एक दफे खा लिया तो फिर आपको क्या अभाव होगी, तब तो आप सबसे बड़ा आदमी हो क्या। ये सब उदाहरण है। जो भगवान एक दफे जिसका हाथ से खा लिया था उसको कभी दारिद्रता नहीं रहेगा, शास्त्र में बताते हैं। आजकल सब कोई हम लोग को पूछते हैं जी भगवत भजन करके क्या होगा, आदमी सब गरीब है और उसको पहले खाने को चाहिए, और हम लोग एडवर्टाइज करते हैं जिसको खाने के लिए कोई संस्थान नहीं है, पहनने का कपड़ा नहीं है और रहने का जगह नहीं है, आइए हमारा पास, हम बंबई में और अच्छी तरह से मकान बना रहे हैं, सब आइए रहिए, बाकी कोई नहीं आता, हमको परदेश से आदमी लाने पड़ता है मंदिर चलाने के लिए। कोई आते नहीं। ये बहुत खेद का बात है, जो भारतीय क्रिश्चियन है उसमें भारतीय कोई आता नहीं, वो मिल में जाता है, विदर नहीं आता। तो हम लोग क्या करें, हम लोग तो खुशामदी कर रहे हैं, या आइए इधर रहिए, इधर भगवान का प्रसाद खाइए और कीर्तन कीजिए और सब चीज आपको मिल जाएगा। भगवान खुद कहते हैं तीसाम नित्याभिजुक्तानाम जुगो किमंग बहम, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन, अनन्न चिंतन तंग मांग जी जो नाप जुपास तेसाम नित्याभिजुक्तानाम जुगो किमंग बहामी अहम। यदि आप अनन्न चिंतन केवल भगवान की चिंतन में निजुक्त रहे, अनन्नस चिंता है तो अनन्नस चिंता है देसाई कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट जो हम लोग सिखाते हैं, तो अनन्नस चिंता सब समय 24 आवर्स 24 घंटा केवल भगवान का चिंता और कोई चिंता नहीं। जो कुछ काम किया जाए सब भगवान के लिए इधर होता है। एक्चुअली आप लोग सब देखिए, हम लोग ऐसे नहीं है बैठ के रहते हैं सोते हैं, नहीं, हम लोग मंदिर में अर्जन करते हैं, भगवान को सजाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और भोग लगाने के लिए अच्छी तरह से रसोई करते हैं और रसोई के लिए चीज हम मांग के ले आते हैं और भगवान के लिए किताब लिखते हैं और किताब भी फिर छपाते हैं, प्रेस में जाते हैं, फिर इस तरह से अच्छी तरह से किताब छपा दिया, देखता है, फिर उसको बेचने के लिए कोशिश करते हैं। इसीलिए 24 घंटा हम लोग का एंगेजमेंट है, 24 आवर्स, एक मिनट भी समय नहीं है। इसका नाम है अनन्य चिंता, और कुछ चिंता नहीं है, केवल भगवान का विषय। जैसा साधारण व्यक्ति उस सब समय अपना घर गृहस्थी का चिंतन करते हैं, किस तरह से अपना गृहस्थी को पालन किया जाए, किस तरह से लड़का बच्चों को शिक्षण दिया जाए, किस तरह से रुपया उपार्जन किया जाए, ये जैसे उनका चिंतन है, हम लोग का भी ऐसी चिंतन है, बाकी भगवान के लिए। भगवान का मंदिर किस तरह से बनेगा, इतना क्यों लड़ाई हम लोग इधर करते हैं, हमारा 108 मंदिर है और एक अगर इधर नहीं हुआ तो 107 तो जरूर रह जाएगा, तो उसमें हमारा कुछ नुकसान नहीं है। बाकी हम लोग सोचते हैं जो ये भगवान का मंदिर बंबई इतना बड़ा भारी शहर है क्यों अच्छी तरह से नहीं बनाया जा, ये हम लोग का चिंता। बाकी बाधाएं देते हैं, नहीं तुमको नहीं देगा तो बाधाएं देने होने दीजिए, बाकी हम लोग चिंतन नहीं छोड़ेंगे, हमारा चिंतन चलेगा, ये हमारा काम है। उसमें सफल होए और नहीं सफल होए वो चिंतन है नहीं, सफल होगा भगवान की इच्छा होगा तो स्वतंत्र इच्छा होगी तो सफल होगा, और नहीं होगा तो हमारे क्या, भगवान का काम भगवान को करने को नहीं दिया तो उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। तो ये इसका नाम है मन मना मम भक्त, ये इतना प्रयास कौन करेगा अगर भक्त नहीं हुआ, वो लोग छोड़ देगा, मतलब क्यों इतना झंझट में जाया जाए, चलो जी इतना टाइम तो कुछ शेयर मार्केट में स्पेकुलेशन करने से कुछ रुपया पैदा हो जाए, तो ये भक्त ही कर सकता है, मन मना भगवत भक्त, इसलिए भगवान कहते हैं भगवत भक्त, क्योंकि उसका चिंतन सब समय रहेगा और वही सबसे बड़ा योगी है जो भगवान का चिंतन किसी तरह से जेनो तेनो प्रकार, ये चैतन्य महापुरुष का फिलोसॉफी है, किसी तरह से जेनो तेनो प्रकार है ना मन कृष्ण निवेश, किसी तरह से मन जो है उसको भगवान का चरण में लगाएगी, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस फिलोसॉफी। तो हर किस्म का काम इधर है, कोई काम आप लीजिए उसमें कृष्ण सेंटर, इसलिए वो मन मना भवमद भक्त, वो भक्त हो गया और मन सब समय भगवान का चरण में उसको लगा रहा, तो उसके लिए भगवान खुद कहते हैं जो इस प्रकार जो व्यक्ति है सब समय हमारा चिंतन करते हैं उसको कोई अभाव नहीं रहेगा, उसका अभाव का विषय है मैं खुद देखूंगा। तेषाम नित्याभिजुक्तानाम जोगो खेमंग बहामी अहम, व्हाट एवर नेसेसिटी इज दे हैव गॉट Krishna is being personality. Here, you take it. And actually, आप लोग देखिए साहब, हमारा 108 मंदिर है सारा दुनिया में, और एक एक मंदिर में है 50 से कम नहीं, 200, 250, 300 तक है भक्त लोग। और समझ लीजिए कितना भक्त है 108 मंदिर में सारा दुनिया में, लंदन में है, न्यूयॉर्क में है, लंदन में दो है, एडिनबरा में है, और लॉस एंजलिस में है, बॉस्टन में है, अमेरिका में 40 है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, सब जगह में है। बाकी कोई भी मंदिर में आप लोग जाइए, देखिएगा कुछ अभाव नहीं है। जो को खेमंग वहामी हम, ये प्रैक्टिकल है, ये थियोरिटिकल नहीं है, जहां हम लोग धोखा देते हैं, बात बताते हैं। आप जाइए मुंबई में भी देखिए कितना परेशान हम लोग हो रहा है। बाकी हमारा सेवा पूजा चल रहा है, अगर मंदिर बनाने को नहीं भी दें तो हमारा सेवा पूजा तो चल रहा है, उसमें हमारा नुकसान कोई नहीं है। बाकी जो लोग बाधा देते हैं उनको नुकसान होगा, जरूर होगा, ये भगवान कभी सहन नहीं करेंगे। तो ये सब होनी चाहिए भारत में, विशेष करके ये, क्योंकि भारत ही संपत्ति है भगवत भक्ति। भगवत भक्ति जो है विशेष करके भारतवर्ष में ही है, इसलिए देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको फिर भारतवर्ष में जन्म दीजिए। इस शास्त्र में भारत भूमि ऐसी है, पुण्य भूमि, कि इधर इधर में जिसका जन्म हुआ है वो स्वाभाविक तौर से ही भक्त होते हैं, उसको जबरदस्ती उसको अभक्त बनाया जाता है। अभी तक जब हम लोग कोई संकीर्तन मूवमेंट किसी शहर में करते हैं, आप लोग देखा होगा मुंबई में हम लोग वो व्हाट इज दैट प्लेस क्रॉस मैदान में दो दफे तीन दफे किया था, तो 30,000-40,000 व्यक्ति सब आते थे। कलकत्ता में किया था, उधर भी यही, हैदराबाद में किया था, मद्रास में किया था। तो अभी तक भगवत भक्ति भारतीय लोग भूला नहीं है, उनको जबरदस्ती भुलाया जाता है, तो भूला नहीं, इसको छोड़ना नहीं, फिर मनुष्य जीवन का असफलता हो जाएगा। ये नहीं, मनुष्य जीवन का सफलता चाहते हैं तो ये भगवत भक्ति अवश्य ग्रहण किया जाए। भगवत भक्ति हीनस्य जाति जपस्तप क्रिया अप्राणस्य ही देहस्य मन्ननं लोकरंजन। भगवत भक्ति जिसका है नहीं, उनको बड़ा जाति और जप तप अस्तिति तपस्या और क्रियाकांड ये सब कैसी है, दे अप्राणस्य ही देहस्य मन्ननं लोकरंजन। जैसे मुर्दा को सजाया जाता है, मुर्दा को सजाने से मुर्दा का क्या लाभ होता, कुछ नहीं लाभ होता, न किसी का लाभ होता। लोक रंजन, एक लोक रंजन है, देखो जी ये मुर्दा को कैसा सजा के ले जा रहा है, आदमी ताली ठोकेगा, देखो जी, बल्कि उसमें लाभ कुछ नहीं है। इसी प्रकार आप खूब बड़ा जाति बन जाइए और बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाइए, सबको बड़ा बड़ा बन जाइए, और भगवत भक्ति है नहीं तो वही मुर्दा सजाने के लिए जैसा होता है वो बात है। इसलिए भगवत भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए, और चाहे ये भगवत भक्ति, ये जो अजामिल पिता का निर्देश अनुसार कहते हैं पितृ संदेश कृत द्विज, ये ब्राह्मण का लक्षण है। जो पिताजी पूजा में बैठे हुए हैं और पिताजी ऑर्डर दिया है आज्ञा, जो बेटा थोड़ा फूल फल ले आओ और भगवान को सेवा में लगाएंगे, और द्विज, ये द्विज का काम है। आदाय तत्व आवृत्य फल पुष्प समित कुशाण, और पिता का निर्देश अनुसार वो बालक फल फूल और समेत इन्हें कुश ये सब लेकर के आ रहे थे वन से, और रास्ता में क्या देखा है कि ददर्श कामिनं कश्चित, एक कामी पुरुष को देखा। कामी माने शूद्र, शूद्र होता है कामी, और ब्राह्मण होता है संयमी, काम को संयमन करते, समा समा दमा अगर कोई व्यक्ति काम लस्टी डिजायर्स को दमन नहीं कर सकता है वो शूद्र है, और जो दमन कर सकता है वो ब्राह्मण है, वो स्वामी है, वो गोस्वामी है। स्वामी का अर्थ होता है मालिक, गोस्वामी का अर्थ होता है जो इंद्रिय का मालिक, साधारणतः इंद्रिय का दास होता है। जीवा है एक इंद्रिय, वो बोला जी एक बीड़ी हमको दीजिए, जीवा सूख गया है तो इसी वक्त बीड़ी देनी चाहिए। इसका माने है मैं जो है जीवा का दास है, जीवा बीड़ी मांग रहे हैं, सिगरेट मांग रहे हैं, आम भी उसको दे रहे हैं। इसके माने हम तो समझते हैं मालिक है इंडिपेंडेंट, बाकी हम जीवा का दास हैं। और जब अब जीवा का दास नहीं होंगे, जीवा बोलता है हमको बीड़ी दीजिए, आप जब बोलेंगे नहीं बीड़ी नहीं, तब अब जीवा का दास नहीं, गो का दास नहीं है, गो का स्वामी है, गो स्वामी, उसका नाम है गो स्वामी। जीवा एक इंद्र है, इंद्र का नाम होता है गो, और जब गो का दास हो जाते हैं तो गो दास, और जब गो का स्वामी हो जाते हैं तो गोस्वामी। इसका नाम गोस्वामी ये नहीं है, तो नाम में तो गोस्वामी है और है बीड़ी का दास, ऐसे काम नहीं चलेगा। गोस्वामी का अर्थ होता है जो गो का स्वामी है। स्वामी जो टाइटल दिया जाता है सन्यासी को, इसका मतलब है जो सब इंद्रियों का स्वामी है, इंद्रियों का दास नहीं है। तो इसी प्रकार कहते हैं आदाय तथा फल पुष्प मित्र संग ददर्श कामिना कश्चित कामिना लस्टी लस्टी मैन, दैट मीन शूद्र, एक शूद्र को देखा कामिनम कचित शूद्रम, शूद्र बता दिया सह कचित शूद्रम सह उधिष्या प्रीत्या च मधुमौरेयम मदा घूर्णित नेत्रया। देखा जो एक औरत शूद्रा ने दोनों ही शराब पिया था, मद घूर्णिता, मद का अर्थ होता है शराब, और उसमें ब्रेन पजल हुआ गया था, मद घूर्णिता पीत्या च मधुमौरेयम मदा घूर्णित नेत्र, आग भी घूम रहा था, इन्हें बहुत अच्छी तरह से पिया हुआ था शराब। आजकल तो इसमें इंकरेजमेंट दिया जाता है जाइए इधर शराब का दुकान है, बाकी ये सब शूद्र का काम है, ये ब्राह्मण का काम नहीं है, ये शूद्र का काम है। मत्तया श्रित विश्रित निव्या, और वो कपड़े भी सब ढीला हो गया था, विश्रित निव्या व्यपीत निरपत्रम, और दोनों मिलकर के वो आलिंगन चुंबन आदि सब कर रहे थे पब्लिक रोड में निरपत्र, कोई लज्जा नहीं, बिल्कुल लज्जा है, निरपत्र किरणतम अनुगायंतम, ऐसे सब काम कर रहे थे, और वो सिनेमा का गान भी गाते थे, उस समय सिनेमा शायद नहीं था, तो अनुगायंतम ऐसी कुछ लस्ट इन्वोकिंग सॉन्ग्स दे आर सिंगिंग एंड हसंतम एंड लविंग एंड स्माइलिंग एंड अनंतिके, बस कोई बाधाएं नहीं, ये एक औरत और एक शूद्र और एक शूद्रानी को देखा। ये ब्राह्मण देखिए इतना क्वालिफाइड है, इतना क्वालिफाइड होते हुए भी सामने में जब देखता है तो उसका मन जरूर विचलित हो जाता है, वो तो बालक है युवक है, और एक ब्राह्मण बालक एकोदा कभी ऐसा देख करके कितना उनका पतन हुआ था वो सब आगे मालूम होगा, और हम लोग रोजाना देखते हैं, अगर रास्ता में नहीं है रास्ता में भी है, और उसको तस्वीर सिनेमा में भी दिखाया जाता है, तो किस तरह से युवक वो अपना ब्राह्मण धर्म में प्रतिष्ठित रहेगा, असंभव है। एक दफे देख करके अजामिल का कितना पतन हुआ था, वो फिर चोर बन गया, डाकू बन गया, ठग बन गया, और जो कुछ होने का था उसका सब हुआ था। और एक दफे देख करके, एक शूद्र शूद्र रानी को आलिंगित देख करके, और हम लोग रोज देख रहे हैं सिनेमा में, तो हमारा कितना पतन हुआ है और होने वाला है वो आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। हाँ, कलयुग है, इसलिए ये जो भारतीय कृष्टि वैदिक सभ्यता, इसको साधारण तौर से रक्षा करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए कलयुग जैसा बीमार है ऐसा दवाई भी है। ये शास्त्र में ऐसा बताया है जो कलयुग युग है ये दोष का निधि है, समुद्र है दोष का, इतना दोष है। ये भागवत में 12वें स्कंद में बताया गया। तो इसके लिए दवाई क्या है, दवाई भी बताया, वो क्या चीज है, कलौ दोष निधि राजन अस्ति जी को महान गुणम।